मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज 6 जुलाई 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की जो फरवरी 2016 में 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दो साथियों के नाम हैं रविंद्र कुमार यादव, आप रांची झारखंड से हैं, और राहुल नैरे, आप सिवनी मध्य प्रदेश से हैं। तो रविंद्र और राहुल, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, दो दिन के गैप के बाद हम सब फिर से यहां बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इन दो दिनों के रेस्ट ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी होगी, एक नई ताजगी के साथ आप आने वाले फिर से 5-6 दिनों का स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। और साथ ही साथ इससे भी बड़ी बात ये कि अभी जो यूपीएससी के जो रिजल्ट आए हैं, मुझे लगता है कि इन रिजल्ट्स ने डेफिनेटली न केवल आपके अंदर एक नया जोश खरोश ही पैदा किया होगा बल्कि आप में तैयारी के प्रति एक नई दृष्टि भी अब भरी होगी। मित्रों, तो चलिए, चूंकि रिजल्ट यूपीएससी का आ गया है और हमारे सामने उसमें सफल होने वाले स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं, उनके बैकग्राउंड्स आ रही है, उनके तैयारी करने के तौर तरीके आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सब अपने इस समय का इस्तेमाल कुछ और ही अलग तरीके से करें। और ऐसा करके न केवल हम अपने इस ऑडियो गाइडेंस को और भी ज्यादा अपने लिए उपयोगी बना लेंगे बल्कि एक रूटीन के तहत जो आप रोज एक पैटर्न पर ये ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं हम उसे भी ब्रेक कर सकेंगे। तो आज कुछ ऐसा ही करते हैं और मुझे यकीन है कि आज का ये किया जाना आपको रास आएगा, आपके लिए उपयोगी भी डेफिनेटली होगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आप सब की ओर से, अपने टीम एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से भी यूपीएससी में सफल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूं और साथ ही ये शुभकामनाएं भी करता हूं कि उनको जो भी सर्विस मिली है वो जहां भी होंगे अपने बहुत ही सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचेंगे और अपने काम को बहुत प्यारा और सफल अंजाम देंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर उन सबके अंदर वो शक्ति पैदा करे, वो वाइब्रेंट या वो ज्वलंत, वो उज्ज्वल चेतना भरे, जिस चेतना के सहारे वो जिस कुर्सी पर बैठे उस कुर्सी को एक नई चमक से भर सकें। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं या यहां तक कि चाहे वो सिविल सर्विस क्वालिफाई किए हुए अभी के स्टूडेंट क्यों ना हो, उनकी चमक कुर्सी से बने। मैं चाहूंगा कि वो दिन बहुत जल्दी उनके साथ जुड़े जब कुर्सी की चमक उनसे पैदा होगी। तो मित्रों, हम सब की तरफ से जो भी सफल हुए हैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब न केवल बेहतर ही करें बल्कि एक बेहतर जिंदगी जिएं, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं भी। मित्रों, अब मेरे लिए ये कहना कोई नई बात नहीं होगी कि किसने टॉप किया है और क्या कहां कहां से कितने सेलेक्ट हुए हैं। आप देख रहे हैं कि चीजें सामने आती जा रही हैं और आगे भी आती जाएंगी। अखबारों में तो हो सकता है कि इसका दौर खत्म हो जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैगजीन्स में लगातार आपको इस तरह की चीजें पढ़ने और सुनने को मिलेंगी। निश्चित रूप से जो भी चीजें मेरे सामने आएंगी मैं उनका इस्तेमाल, उनका उपयोग आपके हित के लिए करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखूंगा। लेकिन मेरी दो अर्ज आप लोगों से है, पहले तो ये कि आप लोगों को कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट जो पता लगता है कि आपके रिच में है और सफल हुआ है, प्लीज आप उसे इग्नोर मत करें, हिम्मत जुटाइए, जाइए और उनसे बातचीत कीजिए। और बातचीत करने से पहले पूरी तैयारी के साथ जाइए कि आपको क्या बातचीत करनी है, और अपनी बातचीत के प्रश्नों को फालतू की चीजों में मत उलझाइए, कितने अटेम्प्ट चाहिए और मैं कैसे सफल हो सकता हूं और मुझे क्या, नॉट एट ऑल। आप केवल उनकी कहानी सुनिए कि वो कैसे सफल हुए हैं। मित्रों, उनकी रैंकिंग चाहे जो भी हो, चाहे वो रैंकिंग 1230 अंतिम स्टूडेंट 1236 वाला ही क्यों ना हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने दिमाग में कहीं भी उसे कमतर ना आके। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस की परीक्षा की सफलता की सूची में स्थान बना लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप ये कतई मत सोचिएगा कि जो जिसने टॉप किया है या जो फोर्थ रैंक पर है और जो बिल्कुल लास्ट में है, उनमें इतना बड़ा अंतर है कि लास्ट वाले से बात करने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा और अगर आप शुरू वाले से बात करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। नंबर किस तरीके से आते हैं उसमें बहुत कुछ संयोग का भी हाथ होता है। क्या पेपर थे, दूसरों के क्या थे, हमारी रैंकिंग क्या बनती है, तो उस ढेर सारे उसमें कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग में क्षण भर के लिए भी ये बात न लेकर न लाएं कि यार इसकी तो 800वीं रैंकिंग है, अच्छा होता अगर 8वीं रैंकिंग वाले से हमें बातचीत करने का मौका मिलता तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और कोशिश करें, मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी प्रिय श्रोता हैं वो किसी न किसी सफल स्टूडेंट से जरूर मिले। आप देखेंगे कि सफल स्टूडेंट से एक बार अगर आप मिल लेंगे तो वो आपको तैयारी करने के ढेर सारे ऐसे सूत्र देगा जो शायद आपके लिए बहुत काम के होंगे और जो शायद आपको दूसरी जगह कहीं मिले भी ना। तो पहली बात तो फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से ये कहने की है। दूसरी मेरी अर्ज आप लोगों से ये है कि प्लीज अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स मिलते हैं कि उसने टोटल क्या मार्क्स स्कोर किए हैं, वो स्टूडेंट जो सफल हुआ है, तो प्लीज लेट मी नो, मुझे ईमेल के द्वारा सूचित करें। मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मार्कशीट जुटाऊं ताकि मैं उसके आधार पर आपको चौतरफा और एक कंप्लीट और बहुत रियलिस्टिक एनालिसिस प्रोवाइड कर सकूं, आपको सही मायने में एक ऐसा रोड मैप प्रोवाइड कर सकूं, न केवल एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में ही बल्कि योजनाओं के बारे में भी। रियलिटी क्या है सिविल सर्विस की, उसमें मुझे बहुत मदद मिलेगी। तो मेरी दूसरी गुजारिश आप लोगों से यह है कि जब भी आपको किसी स्टूडेंट्स की मार्कशीट मिलती है तो प्लीज लेट मी नो, आप ईमेल के जरिए मुझे भेजने की कोशिश करें। मैं आपसे ये दूसरी मदद चाह रहा हूं। मित्रों, अब मैं आता हूं सिविल सर्विस की सच्चाई पर। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को थोड़ी सी रूढ़ लगे, कड़वी लगे, जिसे कह लीजिए कठोर लगे, या हो सकता है कि झूठ भी लगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो अभी तक सिविल सर्विस के बारे में स्टूडेंट्स के दिमाग में जो बातें बैठी हुई हैं वो चाहे किसी भी वजह से बैठी हुई हो, बहुत सी मेरी ऐसी बातें होंगी जिससे उन्हें बिल्कुल ही एक अलग तरीके का नजरिया मिलेगा। हो सकता है कि कहीं मेरी बातें उन्हें बहुत उपदेश टाइप की भी लगे कि ये क्या फालतू की बड़ी बड़ी बातें सर कर रहे हैं, उपदेश देने वाली बातें कर रहे हैं। कहीं हो सकता है कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक भी लगे। आप सोच सकते हैं कि इसका परीक्षा की तैयारी से क्या लेना देना है, ऐसी आपको लग सकती है मित्रों। लेकिन विश्वास कीजिए कि मैं अब जितनी भी बातें आपसे करने जा रहा हूं या यहां तक कि मैं आगे पीछे भी जो बातें करता हूं वो बहुत किसी न किसी आधार पर होती है। मैं बरगलाने के लिए आप लोगों से कोई बात नहीं करता हूं, या तो वो दूसरों की सच्चाई होती है या मेरी अपनी सच्चाई होती है, या अगर इन दोनों में से किसी की भी सच्चाई नहीं तो कम से कम मेरे विचारों की सच्चाई तो होती ही है, तभी मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं, अदरवाइज मैं चुप रहना स्वीकार करता हूं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से मेल्स मेरे पास आते हैं जिनके मैं उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि उसके बारे में उत्तर देने की मैं अपने को उस स्थिति में पाता नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ बहुत ही ऐसी सिविल सर्विस की जो सच्चाइयां हैं उनके बारे में बात करते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है मित्रों कि अब मैं जिन चीजों पर बात करने जा रहा हूं और आगे भी लगातार कुछ दिनों तक हम लोग बातचीत करते रहेंगे, इसमें आप लोगों के बहुत से प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे, और खासकर उन प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही जाएंगे जिन प्रश्नों के उत्तर दुर्भाग्य से मैं अपने मेल के जरिए या अपने ऑडियो के जरिए आप लोगों के प्रश्नों के नहीं दे सका हूं। शायद उन सब के उत्तर एक सामूहिक रूप में यहां आप लोगों को मिल जाए। तो मित्रों, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपर। जानते हैं टॉपर के बारे में, उनका नाम है ईरा, ईरा सिंघल। और मैं ये कह सकता हूं मित्रों कि ईरा सिंघल ने एक तरीके से टॉप करके यूपीएससी में एक नए ईरा की शुरुआत की है। और अब मैं जिस ईरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं उसकी स्पेलिंग है ERA, एक नए युग की शुरुआत। मित्रों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मेरे सामने आते रहते हैं। क्या हम दो अटेम्प्ट में कर सकते हैं? मेरे पास तो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए फीस ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं गांव में रहता हूं लेकिन मुझे कुछ मटेरियल ही नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूं? मैं थर्ड डिविजनर रहा हूं, मैं बीमार हूं, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, मेरे पिता मजदूर। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन मित्रों मेरे पास आते रहते हैं। और नो डाउट कि जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं उनकी जरूरत को समझ रहा हूं, मैं उनकी जरूरत को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, और न मैं उन्हें गलत ठहरा रहा हूं कि उन्हें ऐसे प्रश्नों के उत्तर की तलाश क्यों है। मैं जानता हूं कि इस तरह के प्रश्न दिमाग को मथते रहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उनके जो उत्तर हैं वो आपको अपने आसपास ढूंढने होंगे, अपने समाज में ढूंढने होंगे। और सच ये है कि अगर ईरा सिंघल जैसा कोई जीवंत उदाहरण हमारे सामने आ जाए तो फिर ढूंढने की जरूरत ही नहीं रह जाती। मित्रों, आपको क्या लगता है कि ईरा सिंघल की जो सफलता है वो किसकी सफलता है, वो किस तरह की सफलता है? या कि वो यूपीएससी के किसी स्टैंडर्ड के नीचे चले जाने का प्रमाण है? आप थोड़ी देर के लिए मित्रों, ज्यादा समय के लिए नहीं, आप ईरा सिंघल बन करके देखिए। और आपको बनना ही चाहिए, कम से कम आप संवेदना के स्तर पर तो थोड़ी देर के लिए ईरा सिंघल बने। एक लड़की, पहली बात, लड़की मैं जानबूझ करके कह रहा हूं क्योंकि हमारे समाज की एक सच्चाई बहुत दूसरी है, और वो भी हैंडीकैप, विकलांग, सो कॉल्ड, वो विकलांग नहीं है, प्रूफ कर दिया है कि आई एम नॉट हैंडीकैप, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। और वो भी 62%, मोर देन 50%। मित्रों, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात सच पूछिए तो मैं ईरा सिंघल के जो माता पिता हैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। वो प्रणम्य है मित्रों, मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया था लड़की, और वो भी इस स्थिति में। मुझे आश्चर्य होता है कि ईरा सिंघल के माता पिता ने सच में ईरा को पाला कैसे होगा। याद रखिए कि ईरा सिंघल की जो तैयारी है, जो सफलता है मित्रों, वो सच पूछे तो इंटेलिजेंस की सफलता उतनी नहीं है जितनी कि मानसिक शक्ति की सफलता है। आप कल्पना करके देखिए कि एक लड़की और एक जिन मां बाप ने उनको पाला है उनकी गोद में वो पल रही है, और वो भी विकलांग की इस विकलांगता की स्थिति में। मां बाप ने किस तरीके से उस लड़की के हौसले को लगातार बुलंद बनाए रखने में सफलता पाई होगी। मित्रों, कल्पना करके देखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, चलिए माता पिता की तो कोई भी संतान होती है और अपने संतान के प्रति एक स्वाभाविक मोह होता है, चलिए हम इसको मान लेते हैं। लेकिन जो और दूसरे सदस्य होते हैं, चाहे वो परिवार के हों, चाहे रिश्तेदारी के हों, चाहे समाज के हों, जब ईरा सिंघल इन सब से मिलती होगी या ये लोग जब ईरा सिंघल से मिलते होंगे तो सहानुभूति के अतिरिक्त उसे कोई कुछ नहीं देता होगा। अरे राम राम राम, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या पिछले जन्म में क्या पाप किए थे, पता नहीं कौन कौन सी बातें ईरा सिंघल को अपनी लाइफ में सुनने को नहीं मिली होंगी। मुझे तो लगता है कि शायद ही उसे कभी एनकरेजमेंट वाले वर्ड्स मिले हों सुनने को, एक्सेप्ट उनके अपने माता पिता, दादा दादी, जो बहुत ही क्लोज ग्रुप के होते हैं, जिनसे बच्चा बहुत गहरे रूप में जुड़ा होता है, उनके शब्दों के भाई बहन हो सकते हैं। अदरवाइज तो हर कोई उसके प्रति सहानुभूति दिखा करके उन्हें बेचारा ही साबित करने की कोशिश कर रहा होगा। और मित्रों, जब ईरा सिंघल स्कूल में पढ़ने गई होगी, कॉलेज में पढ़ने गई होगी, उस समय के माहौल को सोचिए, आपको सोचना ही चाहिए। अगर आप सच में इस घटना को अपनी जिंदगी की सफलता की एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनाना चाहते हैं तो आपको सोचना ही चाहिए, और तब तक नहीं सोच पाएंगे जब तक कि आप उस संवेदना के उस पायदान तक उतरे नहीं। क्योंकि ये इस छोटी कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कहानी है। सिविल सर्विस में क्वालिफाई करना, तीन तीन स्टेज में, तीन तीन बार, और क्वालिफाई नहीं करना, टॉप करना, और उस टॉप में आपको मालूम है कि 275 नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं, 275, ऑलमोस्ट मोर देन 10% मार्क्स। और जो कई ऐसे प्रश्न आते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए प्रश्न आते हैं, तो लोगों के मन में धारणा है कि स्मार्ट दिखना चाहिए और फलाना होना चाहिए और ये होना चाहिए। अगर इन पैमानों पर आप मेरा सिंगल को रख दें तो, लेकिन डेफिनेटली हमारे सामने मार्कशीट नहीं है, लेकिन अगर टॉप किया है इरा सिंगल ने तो केवल रिटेन के दम पर नहीं किया है। रिटेन के दम पर आप सिलेक्शन लिस्ट में तो आ सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले होंगे। मुझे प्रतीक्षा है कि इंटरव्यू में के मार्क्स मुझे जल्दी से जल्दी जानने का मौका मिले। वो जो बोर्ड है, जो बोर्ड इरा सिंगल का इंटरव्यू ले रहा था, और इससे पहले भी वो ले चुका था, पहले भी इरा सिंगल को सफलता मिली है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उसने क्या देखा इरा सिंगल ने? यहां से आपको व्यक्तित्व की एक नई चीज दिखाई देगी कि एडमिनिस्ट्रेटर को क्या चाहिए। मेरे पास अभी एक मेल आया था कि जो सब्जेक्ट अगले बार मोटिवेशन के लिए जो उस स्टूडेंट ने सजेस्ट किया, और मैं समझता हूं बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, इस पर हम लोग बात भी करेंगे, वो था कि एक सिविल सर्वेंट में किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, इरा सिंगल को देख लीजिए और पर्सनालिटी के तत्व निकाल लीजिए। व्हाट इज पर्सनालिटी? नॉट विच यू सी। पर्सनालिटी वो नहीं है जिसे आप देखते हैं, पर्सनालिटी वो है जिसका प्रभाव पड़ता है, जिसे आप महसूस करते हैं। और जो प्रभाव पड़ता है और जिसे महसूस करते हैं दोस्तों, वो दिमाग की स्पष्टता और दिमाग की ताकत होती है, शरीर की नहीं। ये प्रूफ किया हीरा सिंगल ने। जो बोर्ड के में जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे, और डेफिनेटली उसकी जो क्षमताएं हैं, उसमें जो आत्मविश्वास है, दिमाग की जो ताकत है, उसको महसूस किया है उसके उत्तरों के जरिए, उसके बाकी चीजों के जरिए। और दोस्तों क्या लगता है कि इतने निगेटिव माहौल में डेफिनेटली आज इरा सिंगल चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय क्या दुनिया में दूसरे देशों के भी समाज कह लीजिए, वहां देखते हुए मैं ये बात महसूस कर सकता हूं मित्रों कि इरा सिंगल के सामने 95% निगेटिव माहौल होगा, पॉजिटिव माहौल तो 5% का होगा। और डेफिनेटली वो 5% का जो पॉजिटिव माहौल था, जो उनके माता पिता की गोद से उसे मिलना शुरू हुआ, 95% पर बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ा है दोस्तों। इसीलिए मैं उनके माता और पिता और जो भी उनके इस तरह के संबंधी रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूं, आप सब की तरफ से भी प्रणाम करता हूं कि कैसे इस बच्ची को पाला है। एक मिनट के लिए भी उसके अंदर कह लीजिए विचारगी का भाव नहीं आने दिया। सोच करके देखिए फ्रेंड्स, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ गई थी, वो मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रही थी, बड़े आराम से मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके अपना जीवन चला सकती थी, और मुझे लगता है कि सैलरी तो यहां से ज्यादा मिलेगी, मिल ही रही होगी, और सोच सकती थी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने एंबिशन को, एंबिशन न भी कहें तो अपनी इच्छाओं को वही विराम दे सकती थी कि ठीक है अब तो जिंदगी चल जाएगी। क्योंकि यही होता है, आदमी अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेता है, और सीमाएं निर्धारित करने के बाद जब उसे एक जगह मिलती है तो वहां फिर बैठ जाता है, ठीक है अब हमारी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया, यहां तक कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आने के लिए इरा सिंगल ने फाइट किया, कोर्ट में गई, ट्रिब्यूनल से जीत कर आई और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ज्वाइन किया। और यह भी नहीं कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ज्वाइन करने के बाद चुप बैठ जाए, मतलब जिसको कहते अंतिम सांस तक सीमा पर डटे रहना। आपको नहीं लगता है कि वो सैनिक थी जो अंतिम सांस तक सीमा पर डटी रही और अंततः फतह का झंडा लेकर वापस लौटी? मित्रों, इस पूरी की पूरी यात्रा को मैंने जो छोटी सी यात्रा इरा सिंघल की बताई है, इसको प्लीज फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि आप संवेदना के स्तर पर महसूस कीजिए, संवेदना के स्तर पर, कि सच में अभी मैं कहना चाहूंगा, लड़की शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उम्र के अंतर को देखते हुए, महिला भी कह सकते हैं, कि कैसे अपने आप को संभाला होगा। और अभी भी वो उन्होंने जो एमबीए भी किया है वो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक है। ब्रिलियंसी तो दिमाग में थी दोस्तों, बहुत से लोग योग्य होते हैं लेकिन सच में उनके पास वैचारिक ताकत नहीं होती। और ऐसे मैं ढेर सारे लोगों को जानता हूं जो केवल अपने वैचारिक कमजोरी के कारण बहुत छोटे स्तर पर रह जाते हैं, अपने वैचारिक अस्पष्टता के कारण अपने बहुत छोटे स्तर पर रह जाते हैं, जबकि वो सब दृष्टि से ठीक है, हर दृष्टि से वो ठीक है, पारिवारिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, लेकिन हौसला नहीं बना पाते, पस्त हो जाते हैं हौसले। दोस्तों ईरा सिंघल ने याद रखिए कि अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ा लिया, अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ा लिया कि उसकी जो सीमाएं थी उसके सामने बौनी पड़ गई, उसके सामने समस्याएं नतमस्तक थीं। हम सब करते क्या हैं, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को अब इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं और अपने सामर्थ्य को इतना छोटा कर देते हैं कि पता लगा कि वो जो समस्या है वो हमारी पूरी की पूरी चेतना पर छा जाती है, जैसे कि लता किसी पेड़ पर छा जाती है और समस्याएं ही समस्याएं दिखाने लगती हैं। सामर्थ्य को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। ईरा सिंघल ने सिद्ध किया है कि सामर्थ्य के सामने कोई भी सीमा बौनी होती है, कितनी भी बड़ी सीमा बौनी होती है। मित्रों छोटे मोटे एग्जामिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिविल सर्विस की बात कर रहा हूं जो आज भी हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। और उसने केवल परीक्षा क्वालिफाई ही नहीं की है दोस्तों, उसने टॉप भी किया है। किसके दम पर किया होगा। चलिए मैं एक बार आपसे फिर से प्रश्न करता हूं, हम सब शारीरिक रूप से सक्षम है, हर दृष्टि से सक्षम है, हम टॉप क्यों नहीं कर पाए। या हम टॉप करना तो चलिए देखिए बहुत कुछ संयोग की भी बात होती है, लेकिन हम लिस्ट में क्यों नहीं आ पाते। चलिए मैं सिविल सर्विस को भी किनारे कर देता हूं, सिविल सर्विस ही सारे पैमाने नहीं है हमारी सामर्थ्य के और हमारी क्षमता के, या हमारे जीवन के जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें हम अपने को इतनी जल्दी विड्रॉ क्यों कर लेते हैं, कितनी जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं और लगने लगता है कि नहीं हम इसके लायक नहीं है या ये हमसे बहुत बड़ा है। मित्रों एक बहुत अच्छी दो लाइन की का शेर है, मैं आप लोगों को ये शेर सुना करके और अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूंगा, वो इसलिए ताकि आपको पता लग सके कि सच में जिस भाग्य का हम सहारा लेकर के बात करते हैं, जिस ईश्वर का हम सहारा लेकर के बात करते हैं और अपने को विड्रॉ कर लेते हैं उसके बारे में हमारी धारणा क्या होना चाहिए। शेर की लाइन है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले, तहरीर का मतलब होता है लेखन, जो लिखा जाता है ना लहराने वाली, उसमें उर्दू जैसे उर्दू लिपि जो होती है वो तहरीर वाली होती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ईश्वर आपसे आकर के पूछे कि तुम बताओ कि तुम चाहते क्या हो और तुम जो चाहते होगे वही मैं तुम्हारे भाग्य में लिख देता हूं, अपने को इतना बड़ा बना लो, इतना बुलंद बना लो। और ये होता है दोस्तों, और ये होता है दिमाग की ताकत से, मानसिक ताकत से। और मैं बार बार अपने मोटिवेशन वाले पार्ट में जो दिमागी तैयारी की बात करता हूं, जो मेंटल स्ट्रेंथ की बात करता हूं मित्रों, वो यही होती है जिसे ईरा सिंघल ने आज हिंदुस्तान के सामने प्रूफ किया है, निगेटिव माहौल में रहते हुए प्रूफ किया है। छोटी मोटी बात नहीं है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आज कि मैं इस बात को यही विराम देता हूं, हम आगे चलकर और ऐसे इश्यूज पर बात करेंगे। और अभी कुछ समय के लिए हम अपने इस पार्ट को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, दूसरे पार्ट को थोड़ा छोटा, क्योंकि इसमें सिविल सर्विस की तैयारी के बहुत से अद्भुत सूत्र छिपे हुए होंगे। मुझे लगता है कि तभी आप सब सिविल सर्विस की तैयारी को सही तरीके से अंजाम दे सकेंगे। अदरवाइज तो हर कोई जानता ही है कि खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और खूब पढ़ो। तो मित्रों एक बार फिर से मैं इरा सिंघल को बधाई देता हूं। आज बात उन्हीं के ऊपर की गई है और निश्चित रूप से उनके पेरेंट्स तो बधाई के पात्र से कहीं ऊपर प्रणाम करने के पात्र हैं। और सच पूछे तो इसी के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो उनके बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, एक मान करके चलें कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उन्हें भावनात्मक रूप से कभी भी कमजोर न होने दें और न उनके ऊपर इतना दबाव ही डालें कि यदि तुम सफल नहीं हो पाए तो ठीक नहीं होगा। वो ये मान करके चलें कि जो कुछ भी है वो उनकी अपनी संतानें हैं, वो बड़ा करने की सोच रही हैं, इसलिए वो सिविल सर्विस में अपीयर हो रही हैं। और जब हम कोई भी बड़ा काम करने की सोचते हैं तो डेफिनेटली उस बड़े काम को करने में सभी के हाथों के मदद की जरूरत होती है और निश्चित रूप से पेरेंट्स के हाथों से अधिक शक्तिशाली और उदार हाथ बच्चों के लिए कौन से हो सकते हैं। तो अपने बच्चों के प्रति ये उदारता दिखाते हुए, इस व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें और समझने के बाद उनकी मदद करें, क्योंकि हमारा भविष्य अब हमारे बच्चे ही होते हैं और हर व्यक्ति अपने भविष्य को संवारना चाहता है। तो यदि मैं अपने भविष्य को संवारना चाहता हूं तो मेरे पास अब इसका कोई विकल्प नहीं रह गया है कि मैं अपने बच्चे के भविष्य को अपना भविष्य बनाकर और उसके भविष्य को संवारने में लग जाऊं। तो मित्रों, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। मैं AIR न्यूज के बारे में बहुत थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि हम लोगों के पास वक्त इतना नहीं है। तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में थी। पहला तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं रूस और साथ ही पांच अन्य मध्य एशियाई देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। उसी दौरान वो दो बहुत इंपॉर्टेंट बैठकों में भाग लेंगे जो आपके दिमाग में होनी चाहिए और उसे आप अलग से निकालें। एक तो है ब्रिक्स राष्ट्रों की बैठक। ब्रिक्स मालूम है आपको कि पांच देशों का समूह है, बी स्टैंड फॉर ब्राजील, आर ये देख लीजिएगा इस तरह से अलग अलग हैं, जिसमें सी स्टैंड फॉर चाइना, एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका, आई स्टैंड फॉर इंडिया एंड आर स्टैंड फॉर रशिया। ये पांच देश हैं, इनका संगठन है, उसमें भाग लेंगे और फिर शंघाई सहयोग संगठन में की बैठक में भी भाग लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होगी और ये जितने भी पांच मध्य एशियाई देश आपको सुनने को मिल रहे हैं 1990 से पहले ये सब के सब रशिया के हिस्से थे। 1990-91 में जो रशिया 16 देशों में विखंडित हुआ है तो उसी से ये छोटे छोटे देश बने हैं और आपको चाहिए कि इन सभी देशों को आप नक्शे पर लोकेट कर लें। मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी तो देखिए कि यात्रा शुरू होगी। फिर है कि ग्रीस न्यूज में तो यही थी कि जनमत संग्रह जारी है, लेकिन अखबार में आज आप लोगों ने देखा है कि जनमत संग्रह में उन्होंने शर्तों को अस्वीकार कर दिया है, यानी कि वो अब जो देश उन पर शर्तें लाद रहे थे बेल आउट पैकेज के लिए, उनके लोगों ने कह दिया है कि हमें ये स्वीकार नहीं है। तो डेफिनेटली अब ये खतरा मंडराने लगा है ग्रीस के ऊपर कि वो यूरो जोन से बाहर हो जाएगा। और ग्रीस का यूरो जोन से बाहर हो जाना केवल ग्रीस के लिए नहीं बल्कि सच पूछे तो जो पूरा का पूरा एक समुदाय है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक गलत सिंबल होगा। इसका यूरो जोन की अर्थव्यवस्था के देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। देखते हैं कि आगे क्या स्थिति बनती है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत पर इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। मित्रों, एक छोटी सी खबर, छोटी सी क्या मतलब उस तरीके से तो बड़ी खबर है, लेकिन अब वो नेशनल न्यूज का भी हिस्सा बन चुकी है। व्यापम मध्य प्रदेश में एक सरकारी ऑफिस है जो जिसका नाम है व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इसी का शॉर्ट फॉर्म है व्यापम, व्यावसायिक परीक्षा मंडल। खासकर जो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें डॉक्टर से लेकर के और नीचे तक की जो भर्तियां होती हैं उसके लिए ये काम करता है। पिछले कई सालों से लगातार भर्तियों में अनियमितताएं होती रहीं, प्रश्न पत्र आउट कराए जाते रहे, पैसा ले लेकर के और कुछ किया जाता रहा। आप देख रहे हैं कि वो मामला बढ़ते बढ़ते अब कहां तक पहुंच गया है। इसको लेकर के बहुत से लोग अभी जेल के अंदर भी हैं और अब जो ये मामला तूल पकड़ रहा है वो दुर्भाग्यजनक पक्ष ये है कि इसके बहुत से जो आरोपी हैं, इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सिलसिलेवार मृत्यु हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा एक कांड है, उसको लेकर के अब इसकी जाँच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखते हैं कि ये क्या रूप लेता है। लेकिन सच पूछे तो न केवल ये कांड ही बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक है, बल्कि अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वह भी कम दुर्भाग्यजनक नहीं है। मित्रों, न्यूज में ही एक छोटा सा डेटा था जो मैं आपको कहता रहा हूं कि वो डेटा आपको, कुछ ऐसे डेटाज होते हैं जो आपके दिमाग में बस जाने चाहिए। और ये बहुत सिंपल सा है कि हमारे देश में लगभग 1.25 लाख डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं, 1.25 लाख। आप समझ सकते हैं कि भारत के पास विपणन की कितनी बड़ी शक्ति है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे देश को कवर करते हैं, क्योंकि डाक तो हर जगह जाती है। तो ये जो 1.25 लाख डाकघर हैं, हमारे मंत्री जी ने कहा है कि इसको डिजिटलाइज करेंगे। तो आप कल्पना करके देखिए कि ई कॉमर्स की रीच कितनी बड़ी हो सकती है। मतलब ये जो डाकघर हैं, ये ई कॉमर्स का जो सामान होगा वो गांव गांव तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जैसे बैंकिंग प्रणाली और दूसरी चीजें आगे बढ़ रही हैं, डाकघरों की उपयोगिता कम हो गई। चिट्ठी पत्री तो अब कोई लिखता ही नहीं है, अब वो तो करीब म्यूजियम में रखने की के दिन आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में डाकघर को भी एक तरह से इसके माध्यम से पुनर्जीवन मिलेगा, और वो बैंकों के रूप में भी डाकघरों के काम करने की बात चल रही है। तो एक प्रश्न बनता है कि कैसे डाकघर घरों को पुनर्जीवित किया जाए। और दोस्तों, पब्लिक स्पीक का जो विषय था डिजिटल इंडिया, वो तो मैंने एक, चूंकि सब्जेक्ट ऐसा है, इसे आप सुन सकते हैं। मित्रों, अब है न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स काफ़ी हैं, लेकिन इसमें जो मंडे के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स कम है, संडे के अखबारों में भी मुझे कुछ बहुत अच्छी क्लिपिंग्स मिली थी दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लिपिंग्स की संख्या काफ़ी है, आप उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो आपके रखने के लायक हैं, खासकर डिजिटल इंडिया वगैरह को लेकर के, खासकर क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर के कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, और आप जब पढ़ेंगे तो समझ भी जाएंगे। एक भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लेकर के भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आज बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है। ये आर्टिकल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप लोग पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें जो संडे के आर्टिकल्स हैं और कुछ जो बड़े आर्टिकल्स हैं, मैं एक कहना चाहूँगा कि जब आर्टिकल्स की संख्या ज़्यादा हो जाए और आपके पास वक्त कम हो, तो आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप सेकेंड डे, थर्ड डे भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज भले ही आप कम पढ़ें, लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये हम लोग आगे चल करके धीरे धीरे, अब सिविल सर्विस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब जिस तरह से कैंडिडेट के बारे में जानकारी मिलती जाएगी, मैं आप लोगों के सामने रखता जाऊंगा। फ्रेंड्स, अब मैं ईमेल पर आता हूं। दो ईमेल का नाम मैं लेना चाहूंगा। एक तो विनय अग्रवाल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा अपनी ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, और आप लोगों की ओर से भी, कि इस एमएससी में फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर के आए हैं विनय अग्रवाल। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, बैकुंठपुर जिले के, ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट भी रहे। तो विनय, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आगे भी लगातार इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहो। और उन्होंने सही बात यह है कि जो मैं उनको बधाई दे रहा हूँ, जो जिस वजह से उन्होंने मेल लिखा, वो ये कि उन्होंने इसका श्रेय एकेडमी की उन 15 दिन की क्लासेस को दिया है। निश्चित रूप से थोड़ा सा श्रेय तो मैं ले भी सकता हूँ, लेकिन बड़ा श्रेय विनय वो तुम्हारा ही है। ठीक इसी तरह से एक मेल है भावना शर्मा का। भावना शर्मा भी जयपुर की हैं और वे भी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हैं। वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू के लिए वो गई। उन्होंने भी लिखा है कि नमस्ते सर, भावना फ्रॉम जयपुर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट माय राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंटरव्यू। द क्वेश्चंस दैट वेयर आस्क्ड वेयर वेल कवर्ड इन डेली ऑडियो गाइडेंस टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत, सेंट्रल गवर्नमेंट एलिजिबली टू बी प्रो कॉरपोरेट, recent thrust on FDI, farmers not getting full advantage of crop insurance, good governance and its elements। उन्होंने लिखा है कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए, और ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका डेली ऑडियो गाइडेंस में बहुत प्रोमिनेंटली, जिन पर बात भी की गई थी और जिन पर क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड की गई थी। तो इसके लिए इन्होंने धन्यवाद देते हुए लिखा है कि आई एंजॉयड माई इंटरव्यू विदाउट एनी फियर आर एंग्जाइटी। मैंने अपने इंटरव्यू को एंजॉय किया और मुझे न कोई डर नहीं लगा और न मुझे इस बात की कोई चिंता थी। भावना, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा मेल पढ़ करके, बहुत लंबे अरसे के गैप के बाद तुमने ये मेल लिखा। मित्रों, खासकर जब मेरे बैच के स्टूडेंट्स जब मेल लिखते हैं, जैसे विनय के बारे में है, भावना के बारे में, और भी इससे पहले जो आते हैं, तो मुझे, मेरे दिमाग में वो उनका वो चेहरा उभर जाता है जिनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होती है, या कुछ याद रह जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेल ही नहीं लिख रहे हैं बल्कि मेरे दिमाग में एक अदृश्य चित्र भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भावना, हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम एक दिन जल्दी से, जैसे ही रिजल्ट आए, मेल लिखकर उसी तरह सूचित करो जिस तरह से ईरा सिंघल ने पूरे हिंदुस्तान को सूचित किया है। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अब आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, फिर हम लोग थोड़े से अलग तरीके से और नए ढंग से बातें करने की कोशिश करेंगे, और ताकि सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में आपको एक सही तरीके का एक रोड मैप उपलब्ध हो सके। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।